नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरभि यादव और आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी गुरुवे जी की डायरी के कार्यक्रम के तहत। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं राहुल यादव जी। राहुल यादव जी नमस्कार, आपका मोबाइल वाणी पर स्वागत है।
नमस्कार जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राहुल जी, श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि राहुल यादव जी है जो एनएसएस के पूर्व स्वयं सेवक रह चुके हैं, साथ में एनसीसी के भी पूर्व कैंडिडेट रह चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनकी राय क्या कहती है इस विषय पर। राहुल जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही जानना चाहूंगी कि आपने गुरुवे जी की डायरी सुनी होगी जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही गई है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपके नजरिए में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है।
देखिए सुरभि जी, गुरुवे जी की जो डायरी थी जो मैंने सुनी थी वो काफी अच्छी डायरी है, वो सभी को सुनना चाहिए। और जो मेरे अनुसार जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वो सबका अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है
जी।
अब जो कई जैसे कि मैं एनएसएस का स्वयं सेवक रह चुका हूँ और हमने कई अंधविश्वास के ऊपर कार्यक्रम चलाया है और लोगों की सोच को बदलने के ऊपर काफी प्रयास किया। जैसे कि जो ढोंगी बाबा होता है वो कपूर जलाकर लोगों को ठगता है कि देखो मुझे दर्द नहीं होता, कपूर से जलता नहीं, जबकि उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है कि कपूर को जो जलता है और जो दर्द होता है उसको अपना मस्तिष्क मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए 3 सेकंड का टाइम लगता है। और जो ढोंगी बाबा होता है वो 3 सेकंड से पहले ही कपूर को नीचे गिरा देता है जिससे लोगों को लगता है कि इसके अंदर शक्ति आए, इसको दर्द का अनुभव नहीं होता।
जी राहुल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोग इस पे सोच नहीं पाते थे। लेकिन इस पर मैं आपसे दूसरा सवाल ये जानना चाहूंगी कि जब भी हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति लोगों में कैसे की जाए, उनकी जन जागरूकता किसमें की जाए, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी शिक्षा निभाती है। लेकिन जैसे कि डायरी में कहा गया है कि कुछ हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो विज्ञान विषय के तो होते हैं जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ाते हैं, वो जब किताबी ज्ञान पढ़ा के क्लास से बाहर स्कूल से बाहर आते तो वो भी खुद इन सब चीजों पे तर्क नहीं लगा पाते, उनका मस्तिष्क भी खुद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं होता। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था खराब है या फिर लोगों में किस तरह से हम और नया प्रयास करके जन जागरूकता करें?
देखिए जो हमारी प्राचीन शिक्षा नीति थी वो एकदम खुले वातावरण में की जाती थी। जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि बच्चों को खुले वातावरण में प्रकृति के साथ प्रकृति के विज्ञान को समझाया करते थे जिससे लोगों के अंदर प्रकृति में जो विज्ञान छुपा हुआ है उसका पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान लोगों तक पहुंचता था और वो इस अंधविश्वास से नहीं बचते थे। लेकिन जो आज की व्यवस्था है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्गत बस 200 पन्नों की किताबें दी जाती है जिसको बच्चों को पढ़ना होता है और बच्चों को बस मार्क्स से मतलब होता है, वो किताब में जो लिखा है उससे मतलब नहीं होता है। तो बच्चे जब बड़ा होगा, जब वो एक व्यक्ति बनेगा तब उसे प्रकृति या फिर किसी भी चीज को तर्क करने की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसे बदलना चाहिए। ये बहुत ही
जी राहुल जी, आपने एक बहुत ही हमें बात यहाँ पे तथ्य बताया कि जो प्राचीन काल की शिक्षा और अभी की शिक्षा में क्या फर्क है कि पहले जो कैसा होता था और अभी की शिक्षा जो है कि बच्चे से मार्क्स लेके पढ़ते हैं और उसमें उतना वो तालमेल नहीं जमा जा पाते रोजाना जीवन से। जी राहुल जी, मैं आपसे अंत में यही जानना चाहूंगी कि जो हमारे गुरुवे जी की डायरी जो मोबाइल वाणी पर प्रतिदिन इनका प्रसारण होते रहता है, ये अभियान लोगों में कितना ज्यादा सफलता आपको दिखती है, क्या लगता है इस अभियान पर?
देखिए जो गुरु जी की डायरी है वो बहुत ही अच्छी डायरी है, उसे हर युवा को सुनना चाहिए क्योंकि जो देश का युवा आता है वो वही उस देश का, क्योंकि जब युवा उस चीज को सुनेगा तो युवा बदलेगा और जब युवा बदलेगा तो देश बदलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो युवा होता है वो देश का भविष्य होता है और वही देश बदलता है।
जी तो श्रोताओ, आपने अभी राहुल जी को सुना जिन्होंने अपनी गुरुवे जी की डायरी पर अपनी स्वयं की राय रखी और जिन्होंने कुछ हमें बातें बताई कि वो किस तरह से एनएसएस में रहते हुए लोगों को अंधविश्वास से दूर करने का प्रयास किया था। तो राहुल जी, आपने अपना इतनी कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका।
जी बहुत बहुत शुक्रिया,
धन्यवाद।